قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم اس موضوع پہ سیکھیں گے جو اس سال میں ہمارا موٹو ہے، ہمارا نصب العین ہے، ہمارا تھیم ہے اس سال کے لیے۔ کیا ہے یہ سال؟ ہماری کلیسیا کے لیے تربیت کا سال ہے۔ سو ہم سیکھنا شروع کریں گے اس بارے میں، تربیت سے متعلق بائبلی تعلیم، بائبلیکل ٹیچنگز آن ٹریننگ اور انسٹرکشنز۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ تربیت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، واٹس دا میننگ آف دا ٹریننگ اور انسٹرکشنز۔ الفاظ کے ذریعے اور عمل سے، تھیوری اور پریکٹیکل، ان کے ذریعے سے کسی کام کو، ہنر یا رویے کو سیکھنا۔ لفظوں کے ذریعے لیکچرز، عمل کے ذریعے پریکٹیکل، کسی کام، ہنر، رویے کو، بیہیویئر کو، سکل کو، کسی کام کو سیکھنا، یہ ٹریننگ ہے، یہ انسٹرکشنز ہے۔ تو تربیت میں صرف سننا نہیں ہوتا، اس میں کام کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور تربیت صرف زبانی سیکھنا سکھانا نہیں، عملی طور پر شامل ہونا ہے۔ ہر بندے کو گاڑی چلانے کا پتہ ہوتا ہے لیکن چلا نہیں سکتا۔ گاڑی چلانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو گاڑی چاہیے، اس کے بعد اس میں انجن ہونا چاہیے، سٹیرنگ ویل ہونا چاہیے، اس میں کلچ، بریک، گیئر ہونا چاہیے، اس میں پیٹرول ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ گاڑی آن کرنی ہے اور گیئر، اگر مینول ہے، گیئر، کلچ اور ایکسلریٹر، ان کو استعمال کرنا ہے۔ بڑا آسان ہے، لیکن میں تو مینول گاڑی چلا ہی نہیں سکتا، یہ مجھے پتہ ہے۔ کلچ دبائیں گے، گیئر چینج کریں گے، لیکن میں کر نہیں سکتا۔ میں نے سنا ضرور ہے لیکن میں کر نہیں سکتا، کیونکہ میں نے کبھی کر کے دیکھا نہیں، مجھے کسی استاد نے کروایا نہیں ہے۔ تربیت صرف زبانی باتیں سننا اور زبانی کہہ دینا نہیں ہے، یہ عملی طور پر ہوتے ہوئے کام کو دیکھنا، سیکھنا اور پھر عمل کرنا ہے۔ دس از ٹریننگ۔ ضرورت اس کی، نیڈ فار دا ٹریننگ اور انسٹرکشنز۔ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہم پورا سال اس پہ مغزماری کریں گے؟ کیوں ہم پورا سال اس تھیم پہ چلتے رہیں گے کہ جی ٹریننگ ہے، ٹریننگ ہے، ٹریننگ ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی پیدائشی طور پر سارے کام کرنے کا ایکسپرٹ، ماہر نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کیا الفاظ؟ کہ ماں کے پیٹ سے کوئی بھی سیکھ کر، سنا ہے نا سب نے یہ، اور کہتے بھی ہیں کہ ہم اپنی پیدائش کے وقت ہر چیز کے ایکسپرٹس نہیں ہوتے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ سیکھنے کی ضرورت ان کو ہے جو ایکسپرٹس ہیں۔ اب مائیکل شوماخر کو ہمارے بحرین کا کوئی بہت بڑا ڈرائیونگ انسٹرکٹر کہے کہ آئی ول ٹیچ یو ہاؤ ٹو ڈرائیو، مائیکل شوماخر کا نہیں پتا نا، فارمولا ون ریسر ہے، گاڑیوں کا چیمپئن ہے، جو گاڑیاں کی ریس ہوتی ہے اس کا چیمپئن ہے، اور اس کو بحرین کا کوئی بڑا ماہر ٹرینر، معلم، استاد ڈرائیونگ کا کہے آئی ول ٹیچ یو ہاؤ ٹو ڈرائیو، تو وہ کہے گا بابا میں نہیں سیکھتا، مجھے پتہ ہے سب، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ تو نہ سیکھنے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جن کو سب کچھ آتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی سیکھنے کی تو ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب مائیکل شوماخر کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ پادری کا کام نہیں کر سکتا۔ اس کو کھڑا کر دو پلپٹ پہ، اس کو کھڑا کر دو چرچ میں آلٹر پہ، تو اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے آگے۔ मुझे उसके बारे में ये बिल्कुल नहीं पता कि वो कितना अच्छा कुक है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि वो जूतियां सीना नहीं जानता, क्योंकि उसका प्रोफेशन नहीं है। वो तो एक्सपर्ट है गाड़ियां चलाने में, शायद बहरी जहाज वो नहीं चला सकता, शायद वो अपनी गाड़ी का मैकेनिक नहीं हो सकता, शायद उसको अपनी गाड़ी में खराबी आ जाए तो उसको ठीक करना भी नहीं आता होगा, क्योंकि उसकी टीम है पूरी, गाड़ी के टायर और लोग चेंज करते हैं, उसके इंजन की देखभाल और लोग करते हैं, और उसके लिबास का ख्याल और लोग रखते हैं, एक पूरी टीम है उसकी। वो अकेला सारे काम नहीं करता, उसको बहुत से काम नहीं आते, सीखने की जरूरत होती है इंसान को। पैदाइशी तौर पे हम सारे काम नहीं जानते, हमें सीखने की जरूरत होती है। और जो लोग कहते हैं मुझे नहीं सीखना, वो बेवकूफ होते हैं। खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, अहमक, बेवकूफ, फूलिश, वो ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन की तौहीन करते हैं, उससे मना करते हैं, वो सीखना नहीं चाहते। वो कहते हैं क्या जरूरत है सीखने की, क्या जरूरत है ट्रेनिंग की, बहुत कुछ सीखा हुआ बचपन से, जो तरबियत की, ट्रेनिंग की, इंस्ट्रक्शंस की हकारत करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो बेवकूफ हैं। ये बाइबल कहती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें तरबियत की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है, तो बाइबल क्या कहती है कि मैं और आप कौन है? जरा ऊंची बोलिए प्लीज। खुदा क्या कहता है? जो तरबियत नहीं पाना चाहते, उसकी तौहीन करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हकारत करते हैं, वो कौन है? अहमक है, बेवकूफ है। तरबियत ना पाने से नुकसान होगा, खुदा का कलाम कहता है कि वो जिंदगी से जाएगा, जिंदगी खोएगा, वो परेशानियों और दुखों में पड़ेगा, उससे काम ठीक नहीं होगा, नुकसान उठाएगा, इट ब्रिंग्स लॉसेस, नुकसान होते हैं इससे। अम्साल बाब नंबर 5 है और आयत नंबर 23, और 15वां बाब है और आयत नंबर 32। वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा। जो तरबियत नहीं पाता, वो तरबियत ना पाने के सबब से, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस ना लेने के सबब से क्या होगा? मर जाएगा, जिंदगी खोएगा वो। बाब नंबर 15 में देखिए, आयत नंबर 32 है, तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन है। नुकसान उठाते हैं जो तरबियत नहीं पाते, वो अपनी जान का नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते, अपनी जान का पहले नुकसान करते हैं। जैसे ड्राइविंग की ट्रेनिंग ना लेने वाले अगर ड्राइविंग करना शुरू कर दें, तो वो खुद अपना भी एक्सीडेंट होगा ना, किसी का तो नुकसान बाद की बात है, पहले अपना होगा। तरबियत से दोस्ती करो और उसे मजबूती से पकड़े रहो, ये खुदा का कलाम सिखाता है। लव एंड टेक फास्ट होल्ड ऑफ हिज ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। तरबियत पाने के लिए खुशी से दोस्ती रखो तरबियत से, जहां से तरबियत मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, इंस्ट्रक्शन मिल रही है, खुशी से लो और मजबूती से उस तरबियत को थामे रहो, उस तरबियत को छोड़ो नहीं। एक बंदे को मैं जानता हूं बहरीन में, उसने कुछ शायद 20 साल से ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ, लेकिन स्टेयरिंग कभी नहीं पकड़ा। ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, गाड़ी चलानी सीख ली, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा खौफ बैठा हुआ है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता। लाइसेंस रिन्यू करवा लेता है, जेब में लाइसेंस लेके घूमता है, लेकिन गाड़ी नहीं चलाता, क्या फायदा? तरबियत को पकड़े रहो, उसको छोड़ना नहीं, उसको लूज नहीं करना। तरबियत से मोहब्बत करने है, तरबियत से दोस्ती रखनी है, और उसे मजबूती से थामना। जो कुछ सीखना है उसे मजबूती से थाम के रखना, उसमें से कुछ गंवाना नहीं है। और तरबियत से इज्जत सरफराजी मिलती है, खुदा का कलाम यह सिखाता है। अभी जो आयत तलावत की गई हम साल पहले बाब में से, तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा होगा, ये सरफराजी लाती है। जो तरबियत पाते हैं, जो स्किल्ड हो जाते हैं, जो ट्रेन्ड हो जाते हैं, अभी ताजा एक मिसाल मुझे मिली है कि स्कूल में पढ़ाने वाले जो बीएड कर लेते हैं ना, उनके रैंक्स बढ़ जाते हैं, उनकी तरक्की हो जाती है, उनको इजाफा हो जाते हैं, उनकी सैलरी में, उनके पैकेजेस में, खाली बीए करने वालों के कम होते हैं, बीएड करने वालों के ज्यादा हो जाते हैं। तो जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली, जिन्होंने तरबियत पा ली, जिन्होंने सीख लिया, उनको इज्जत मिल गई, सरफराजी मिल गई, तरक्की मिल गई। तरबियत किन किन मामलात में? खुदा का कलाम ये बताता है हमें, खुराक खाने में, परोसने में, पकाने में, बनाने में, तरतीब से रखने में तरबियत की जरूरत है। ये होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज जो होते हैं, स्पेशली जो किचन और टेबल सर्विंग के, ये पूरी ट्रेनिंग है, एक आर्ट है, एक फन है, ये पूरी एक साइंस है कि आपको ग्लास किस हाथ रखना है, चम्मच और कांटा और छुरी किस तरह से रखने हैं, प्लेटों का साइज क्या होगा, और टेबल पे कितने लोगों के लिए आपने जब अरेंज करना है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, आपने किस हाथ में ट्रे, किस हाथ में ग्लास, किस हाथ में प्लेट रखनी है, चीजें रखनी है, ये सारा एक आर्ट है। और चीजों को खाने का भी आर्ट है। हम जितने मर्जी फैशनेबल हो जाएं, कोई आम छुरी कांटे से खा के तो दिखाए, तरतीब है, एक तरीका है खुराक का, खाने का भी, लगाने का भी, बांटने का भी। पोशाक के तरीके हैं, खुदा ने सिखाए हैं। अब कौन शलवार कमीज पे टाई पहनता है, कौन सूट बूट टाई लगा के या वो अपनी बो लगा के सस्पेंडर्स डाल के नीचे जॉगर्स पहनता है? नहीं ना पहन सकते। सूट टाई लगा के आप चादर की बुक्कल नहीं मार सकते। वो अलग बात है कि हमारे बुजुर्ग ऐसा किया करते थे, क्योंकि वो कहते थे फैशन अपनी जगह, मौसम की वजह से टोन ठंड लगा ली है। सो पोशाक के भी मैनर्स हैं और उसकी भी तरबियत होती है। साड़ी लगाना भी सबको नहीं आता, किसे सीखना पड़ता है। गुफ्तगू के तरीके हैं, सलीका सीखना पड़ता है। और दुनिया में इस वक्त लोगों को ये बड़ा एक क्रेज है, हाउ टू बी अ गुड स्पीकर। और मेरे प्रोफेशन में जब कमाई ही जुबान से है, तो हमें गुफ्तगू का, स्पीच का, खिताब का फन सीखने की जरूरत रहती है। गुफ्तगू के भी आदाब है। खुदा का कलाम बहुत सिखाता है, जब तू बात करे तो कैसी करे, तेरा लहजा कैसा होना चाहिए, तेरा मिजाज कैसा होना चाहिए। नशिस्त और बर्खास्त, बैठने उठने के आदाब हैं। खुदा के घर में बैठने के आदाब और हैं, ससुराल में बैठने के आदाब और हैं, दोस्तों में बैठने के आदाब और हैं, है ना। और जब आपके सामने बॉस बैठा हुआ है, तो फिर बाजू फैला के, टांगों पे टांगे रख के, जूता उसके मुंह की तरफ करके बैठने का अंदाज और है ना। क्योंकि उस वक्त हमारे सब की सिट्टी गुम हुई होती है, हम बड़े खामोश होते हैं, क्योंकि बॉस है। गुस्ताखी हो गई तो खड़े खड़े निकाल लगा, जा दफा हो, तुझे तो बैठने की तमीज नहीं है। उठने बैठने के, आने जाने के, दाखले के आदाब हैं। मुंह उठा के दरवाजे खोल के हम नहीं आ जाते, दरवाजा नॉक करते हैं। डोरबेल किस लिए होती है? कि भाई नॉक कीजिए, बेल कीजिए, कोई अंदर, भले आपका अपना घर है, उसमें कैसे दाखिल होना है? आपके घर में बेटियां हैं, आपकी अपनी बेटियां हैं, आप किसी दोस्त को साथ लेके आ रहे हो, वो सामने इस हालत में है कि जो आपके लिए भी मुनासिब नहीं है। मुंह उठा के आगे, दरवाजा खोल के, और सामने वो बैठी हुई हैं उस हालत में कि जिसमें किसी का देखना मुनासिब नहीं, तो क्या होगा फिर? किसकी रुसवाई, शर्मिंदगी? दाखले के, उठने के, बैठने के, खरूज के आदाब हैं। खुदा के घर के भी आदाब हैं, हर एक घर के आदाब होते हैं। सो सीखने की इन चीज़ों को ज़रूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे हम, लेकिन ये चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। इल्म, हिकमत और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स और स्किल्स, हमें ये भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। कोई भी इल्म है दुनिया का उस्ताद के बगैर नहीं आता। कोई हुनर है, कोई फन है, आप जमीन खोदना, उसमें बिजाई करना, उसको उसकी गोडी करना, उसको पानी देना, क्यारियां बनाना, फिर उस पौधे की देखभाल करना, उस फसल का ख्याल रखना, ये मेरे जैसों को नहीं आता। सीखना पड़ता है, तरबियत पानी पड़ती है, किसी को करते हुए देखना और फिर उससे पूछना कि आपने ये क्यों किया, मुझे कैसे कैसे और कब करना है, ये तरबियत पाने की जरूरत है। बड़े बड़े काम तो फिर बाद की बातें हैं, इंजीनियर बनना, आर्किटेक्ट बनना, और उस्ताद बनना, और डॉक्टर बनना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। हम तो एक अपना जूता कहीं से खुल जाए तो उसको सीना हमें नहीं आता, हम उसको लेके कॉबलर मोची के पास जाते हैं कि भाई ये सीधो, और उसको पैसे देते हैं, क्योंकि मुझे और आपको वो फन नहीं आता। सो इल्म है, हिकमत है, और प्रोफेशनल स्किल्स हैं, पेशावराना या फनी हुनर है, हमें वो सीखना पड़ता है। यहां तक कि भले स्वीपर का काम है ना, बहरीन में जो आते हैं ना और उनको सफाई का काम मिल जाता है, उनको मशीन चलानी नहीं आती, क्योंकि यहां मॉपिंग है, यहां वैक्यूम क्लीनर्स हैं, यहां मशीनें हैं जिनसे सफाइयां होती है, हमें पता ही नहीं होता। सीखना पड़ता है, तरबियत लेनी पड़ती है कि इस कमरे में इस चीज की किस तरह से सफाई करनी है। कोई भी काम है, कोई भी हुनर है, फन है, इल्म है, हिकमत है, हमें सीखने की जरूरत पड़ती है, हर चीज हमें सीखनी चाहिए। और फिर ईमान और रास्तबाजी और दीनी मामलात में हमें सीखना जरूरी है, तरबियत की जरूरत है। खुदा का कलाम सिखाता है कि हमें रास्तबाजी के मामलात में, ईमान के मामलात में, और दीन से मुतालिक, अपने रिलीजन, अपने फेथ से मुतालिक हमें तरबियत पाने की जरूरत है। अपने आप नहीं सारी चीजें आ जाती। हम क्यों चर्च स्कूल या संडे स्कूल या बच्चों का जो जूनियर चर्च है ये क्यों करते हैं? हम उन्हें सिखाते हैं, उन्हें तरबियत देते हैं। हम अपने बच्चों को क्यों माँ बाप के लिए हम कहते हैं कि जी आप अपने बच्चों को सिखा के लाएं चर्च में कैसे बैठना है? माँ सर पे दुपट्टा लेके चर्च में बैठेगी तो बेटी को खुद ब खुद शौक आ जाएगा कि भाई ये काम करना जरूरी है। जब बाप एक बिल्कुल डिसेंटली चर्च में आके बैठता है तो बेटों को उससे तालीम मिलती है कि हमें किस तरह से चर्च में आना और बैठना है। कोई भी मामलात हैं, जिंदगी के मामलात हैं, उनमें हम सीखते हैं अपने बड़ों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से। हमें ईमान, रास्तबाजी और दीन के मामलात, फेथ के, क्रीड के, अपने राइचियसनेस के जो मामलात हैं, उनमें भी तरबियत पाने की जरूरत है। ये अपने आप हमें नहीं आते। इबादत और खिदमत में भी तरबियत की जरूरत है। इबादत में दुआ है, हम्दो सना है, कलाम मुकद्दस की तलावत है और उसकी तालीम देना है, यहां तक के हदिया उठाना और हदिया गिनना और साज बजाना और सारा अपरेटस लगाना, पूरा अरेंज करना, सारा इंतजाम, प्रोजेक्टर ऑन करना और स्लाइड्स चलाना और रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीजें इबादत में इस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। और खिदमतें हैं, पासवानी खिदमत से लेकर एक आम दरवाजे पे खड़े होने वाले और इस खुदा के माबद, इबादत गाह, प्रस्तिश गाह, खुदा के जलाली तख्त की जगह, उसके पांव की चौकी की सफाई सुथराई और मेंटेनेंस के लिए भी जो लोग जिम्मेदार हैं वो तरबियत पाते हैं, वो सीखते हैं। खुदा के घर में इबादत, घर में इबादत, किसी भी जगह पे इबादत या खिदमत के लिए भी बाकायदा तरबियत की जरूरत रहती है। और हमें इन मामलात में सीखने की, तरबियत पाने की जरूरत है। खुदावंद यीशु के शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा। यीशु ने दुआ करना सिखा दिया और उसी पैटर्न पे हम भी हर इबादत के आखिर में दुआ करते हैं। पता है क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु ने सिखाई है वो दुआ। और उस दुआ की हम इस पे पूरी एक तालीम का सिलसिला कर चुके हैं, इस पे सीख चुके हैं बतौर कलीसिया। जो लोग उस वक्त हमारे साथ शामिल नहीं थे उनके लिए सिर्फ एक ये नुक्ता बता देता हूं कि उस दुआ की अहमियत क्या है। वो यीशु ने सिखाई है तो वो दुआ है, वो अल्फाज हैं जो यीशु को पता है कि ये कबूल होने हैं। अगर उनकी कबूलियत में कोई शक शुबा होता तो यीशु वो दुआ ना सिखाता। यीशु की सिखाई हुई दुआ है वो तो सीधी बाप के दिल को पहुंचती है, वो तो सारे बैरियर्स, सारे फाटक तोड़ती, सारे दरवाजे तोड़ के गुजर जाती है। शर्त है कि दिल से मांगी हो। वो अल्फाज हैं और उनमें सब कुछ समोया गया है। और हमारी दुआएं तो नाकिस हैं, रोमियो में लिखा हुआ है कि हमें तो दुआ करना नहीं आता। तो हमारी दुआओं की जो कमियां होती हैं ना, जो कमजोरियां होती हैं, जो खामियां होती हैं, हम आखिर में वो दुआ करके तो ये जाहिर करते हैं कि मेरी सारी कमियां तू पूरी कर दे, क्योंकि मैं अब वो दुआ करने लगा हूं जो यस्सू ने सिखाई है, और इससे ऊपर कोई दुआ है नहीं। कोई इंसान यस्सू की सिखाई दुआ से ऊपर कोई दुआ नहीं कर सकता। सो हमारी सारी दुआएं जितनी बड़ी ऊंची लंबी हम करें, जितनी मर्जी खूबसूरत अल्फाज के जुमलों की करें, जब हम आखिर करते हैं, एंड करते हैं इबादत का, तो इसलिए वो पढ़ते हैं कि हमारी दुआओं की सारी कमजोरियां इस दुआ में छुप जाती हैं। जो कुछ रह गया, जो कुछ छूट गया, वो इसमें हम कर रहे हैं तेरे हजूर के तू कबूल कर, अब सब कुछ तेरे ही सुपुर्द है, क्योंकि हमारे पास कोई लफ्ज नहीं बचा, हम वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो यस्सू ने सिखाए। तो वो दुआ सिखाई यस्सू ने हमद व सना के लिए। तवारीख की किताब में लिखा हुआ है कि हमद व सना के लिए दाऊद ने जो टीम तैयार की, सैकड़ों हजारों लोग, साज बजाने वाले और गाने वाले, और लिखा है कि वो तालीम पाकर मुकरर हुए थे, तालीम पाई थी। और इसलिए भाई आसफ हमारे बच्चों को भी और हमें भी तरबियत देते हैं, तालीम देते हैं गाने में। हम गलत गा रहे हैं, हम बेसुरे हो गए हैं, बेताल हो गए हैं, हम कॉर्ड से हट गए हैं, वो हमें सिखाते हैं, हमारे बच्चों को वो बजाना, साज बजाना सिखा रहे हैं और तरबियत दे रहे हैं। तो ये सीखने का काम है। तो कलीसिया में खिदमत, पासवानी से लेकर झाड़ू पोंछे तक, हर एक खिदमत में तरबियत की जरूरत है। और पौलुस जब साउल था तो वो गमलीएल का शागिर्द था, और उससे उसने तरबियत पाई थी ईमान की। वो यहूदी था तो यहूदी अकीदों की, यहूदी शरीयत की, यहूदी खिदमतों की उसने गमलीएल से तरबियत पाई थी। तो खुदावंद यस्सू से उसके शागिर्दों ने तरबियत पाई थी। इसलिए जरूरी होता है खिदमत के लिए तरबियत पाना। बेउस्तादे और बगैर तरबियत के जो लोग होते हैं वो अहमक भी होते हैं और वो नुकसानदेह भी होते हैं, क्योंकि उन्हें दुरुस्त तरीके से काम करना नहीं आता। तो ये जरूरी चीजें हैं। अब तरबियत करने वाला कौन है? खुदा खुद तरबियत करता है। उसने बनी इसराइल की तरबियत की आवाज से, अपने कलाम से। लिखा है कलाम में कि उसने अपने लोगों की तरबियत की। खुदा तरबियत करने वाला है, खुदा सिखाता है, खुदा हमारे दिल में इल्म डालता है, खुदा हमारी सोच में, हमारे ध्यान में खुदा अपनी बातें लाता है। उसने नबियों और रसूलों की तरबियत की, और फिर उनके बाद जिम्मेदारी लगी कलीसिया बुजुर्गों की कि वो तरबियत करें। खुदा सबसे बड़ा तरबियत करने वाला है। वो हमें तालीम देता, हमारी तरबियत करता, हमें सिखा रहा है। वालिदैन तरबियत करने के जिम्मेदार हैं। ऐ औलाद वालों, अपने बच्चों को तरबियत और नसीहत दो। बच्चे को कभी ना कहें कि बेटा जाके उठ के काम कर, टीवी ना देख जब आप खुद ड्रामा देख रहे हो। अगर आप बच्चे को कहना चाहते हैं कि टीवी से उठ जाओ, तो पहले टीवी खुद बंद करें, उसके साथ बैठें कि आओ बेटा हम पढ़ें। अगर आप उसको दुआ के लिए कहना चाहते हो तो ये मत कहो कि डू योर प्रेयर्स एंड गो टू बेड, कि दुआ करो और सो जाओ, उसके साथ बैठो, आओ बेटा दुआ करें और बिस्तर पर चलो। जब करोगे तो बच्चे सीखेंगे। माँ बाप जिम्मेदार हैं अपनी औलाद की तरबियत के। जब माँ बाप टेलीफोन पे, ब्लूटूथ पे, मोबाइल पे, किसी भी तरह से चर्च में अंदर बाहर आना जाना, चलना फिरना, कंटीन जाना और कभी वॉशरूम जाना लगा रहता है माँ का बाप का, तो बच्चे भी कहते हैं इट्स नॉर्मल, ये आम बात है, कोई मुश्किल नहीं है। जब माँ या बाप फोन पे किसी रिश्तेदार की बुराई कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे के जहन में वो इंप्रेशन बनता है, हाँ ये वाली फुफ्फो तो है ही हमारे घर लड़ाइयां करवाने वाली, क्योंकि मेरी मामा कह रही थी। अपने बच्चों की तरबियत आपके जिम्मे है। चर्च में उन्होंने कैसे आना, कैसे बिहेव करना, किसी को मिलना, किसी से बात करनी, किसी से जो भी करना है, ये माँ बाप का काम है, ये जिम्मेदारी है उनकी। और जो इल्म है, जो तालीम है, जो मुआशरे का, समाज का, दुनिया का इल्म है, और जो दीन का इल्म है, वो पासवानों और उस्तादों की जिम्मेदारी है। जो क्लास में नहीं आता वो लेक्चर लेसन मिस करता है। उसको सिखाने के लिए टीचर घर नहीं जाते। आपके बच्चे अगर ईमान में कमजोर रहेंगे तो उसकी वजह आप हो, क्योंकि आपने अपने बच्चों को तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए खुदा के घर में वक्त पर नहीं भेजा, भेजा भी 5:30-6:30 या 6 महीनों में 2 बार 3 बार, और फिर एक्सपेक्ट करना कि हमारा बच्चा ईमान में पतरस और पौलुस और यूहन्ना के साथ तख्त पे बैठे, वो एलिया जैसे मौजजे करे, उसकी हड्डियों को मुर्दे लगे तो जी उठे, एलीशा की तरह, वो बिली ग्राम की तरह दुनिया भर में खुदा की खिदमत में एक बड़ा सितारा हो, उस्ताद और पासबान तब खिदमत पूरी कर सकता है जब कोई आएगा, सीखने आएगा, आएगा। जिम्मेदारी है हमारी ईमान के भेद और निजात की बातें और खुशखबरी के भेद और मसीह के बारे में, रूहुल कुद्स के बारे में, खुदा बाप के बारे में, बाइबल में जो खुदा का कलाम है इसके बारे में, मसीही जिंदगी की बातें आपको और आपकी औलादों को सिखाना, चर्च स्कूल टीचर्स का, विमेंस फेलोशिप टीचर्स का और चर्च में पासबान की जिम्मेदारी है। तरबियत इनसे लेनी है, और अगर कोई तरबियत को रद्द करता, उसकी तहकीर करता, उसको इग्नोर करता है तो वो क्या है? पहला नुक्ता क्या सीखा था? वो कौन है? मानो या ना मानो, मान गए ना हम। बात आई पासबान पे, उस्ताद पे जो चर्च में है, तो फिर ये मसीही तरबियत है। मसीही तरबियत के वसाइल, मीन्स ऑफ क्रिश्चियन ट्रेनिंग, क्रिश्चियन इंस्ट्रक्शंस। खुदा का रूह सबसे बड़ा वसीला है। खुदा ने हमें तरबियत करो दिया है, द स्पिरिट ऑफ ट्रेनिंग। खुदा ने हमें सीखने, सिखाने का फजल दिया है। रूहुल कुद्स हमें बख्शा गया है, जो हमारा उस्ताद है, जो हमें सिखाता है। वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। ईमान और मसीही जिंदगी की बाबत जो तरबियत है, वो सबसे बड़ा वसीला खुदा ने ठहराया है रूह कुछ, द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड। नहमिया में बाब नंबर 9 में आयत नंबर 20 में लिखा है, उसने अपनी रूह तरबियत के लिए उन्हें दी है। दूसरा वसीला खुदा का कलाम है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, ये तरबियत पाने के लिए मुफीद है। किन किन मामलात में? तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत पाने के लिए। तालीम इसमें से दी जाती है, आपके अंदर खराबी है, ये इल्जाम हुआ। इस्लाह ये है कि आपकी मदद की जाए, किस तरह से आपको इस मुश्किल से, इस मुसीबत से निकाला जा सकता है। और फिर रास्तबाजी में तरबियत पाने के लिए खुदा का कलाम हमारी जिंदगी से जुड़े हर एक मसले का हल इसमें मौजूद है। जिंदगी जो जमीनी है और ईमान जो रास्तबाजी की बातें हैं, उनकी बाबत सब कुछ इसमें हमें हिदायत नसीहत मिलती है। सो ये वसीला है हमारी मसीही तरबियत का, रूह कुद्स, खुदा का कलाम, इससे हमें तरबियत मिलती है। और फिर खुदा के खादम, जिसको भी आप खुदा का खादम मानते हैं, जिससे भी आप अपना उस्ताद, रूहानी उस्ताद मानते हैं, जो भी आपकी कलीसिया का पासबान है, फादर हैं, पास्टर हैं, प्रीस्ट हैं, बिशप हैं, ब्रदर हैं, कोई भी नाम आप उनका, उनके लिए टाइटल आप यूज करते हैं, उसे जहन में रखिए, वो खुदा ने आपको वसीला दिया हुआ है। जरा देखिए इफिसियों की किताब में से, इफिसियों के खत में से बाब नंबर 4 है, इफिसियों बाब नंबर 4 और उसकी 11वीं आयत से, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर, उस्ताद बनाकर, बाइबल में देखिए क्या लिखा है, दे दिया आपको एज अ गिफ्ट दिया हुआ है। और जो बाइबल मुकद्दस की तशरीह और तफसीर करने वाले उस्ताद लोग हैं सदियों से, जो किताबें लिख रहे हैं, वो ये लिखते हैं कि ये खिदमत गुजार लोग, कि ये जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है, इसमें 4 लोगों की बात है लेकिन काम 5 हैं। पहला है रसूल, नबी, मुबश्शर, 3 हो गए, और फिर चौथा बंदा है जिसके पास 2 काम है, उस्ताद और चरवाहा। टीचर एंड पास्टर, ये खुदा ने दिए हुए हैं आपको एज अ गिफ्ट, जैसे रूहुल कुद्स तोहफा है, जैसे खुदा का कलाम आपके पास तोहफा है, खुदा ने आपको रूहानी, दीनी, ईमान, रास्तबाजी, अकायद और मसीही जिंदगी में तरबियत पाने के लिए खुदा ने आपको द थर्ड मीन्स ऑफ ट्रेनिंग, वसीला दिया हुआ है ये लोग। और लिखा है इफिसियों में, जरा देखिए, उसी में देखते रहिए, चौथा बाब है और 11वीं आयत से मैंने पढ़ा और 12वीं आयत में लिखा है, ताकि ये लोग इसलिए दिए गए ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। हम सिखाते इसलिए नहीं है कि आपकी बेइज्जती करें। जी कई लोग कहते हैं, सर जी मीठी मीठी बड़ी बेइज्जती करते। मैं बेइज्जती नहीं करता, मैं आप पे मुकरर किया गया हूं, मेरी जिम्मेदारी है आपको दुरुस्त करना। इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं पॉइंट्स, गलत जोड़ देने से क्या होता है और क्या होगा, नुकसान तो नहीं ना होगा बल्कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलत पॉइंट जुड़ने से इलेक्ट्रिसिटी में धमाका होता है। मैं हूं इलेक्ट्रिसिटी में आपका उस्ताद और आप जोड़ रहे हो गलत पॉइंट और मैं कहता हूं बेटा लगा रहे, मैं अच्छा उस्ताद हूं, मैं तो आपको मार रहा हूं, मैं तो नुकसान कर रहा हूं। अच्छा उस्ताद वो कह, ये गलत है। और बार बार अगर नेगेटिव पॉजिटिव में गलत आप पॉइंट जोड़ोगे तो फिर एक दिन उस्ताद छेगा करना थे ठा, ठीक है, तो छड़ी इस्तेमाल करने का भी इख्तियार है। क्या तुम चाहते हो कि मैं लकड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं? मां बाप के लिए हुक्म है कि तुम अपने औलाद से छड़ी को बाज ना रख। बच्चों पे सख्ती भी करनी पड़ती है उन्हें सिखाने के लिए। सो खुदा ने ये आपको गिफ्ट्स दिए हैं, वसाइल दिए हैं तरबियत पाने के लिए। तरबियत पाना जरूरी है जिंदगी के मामलात में, आम जिंदगी में भी और रूहानी कलीसियाई खिदमती जिंदगी में भी। खुदा ने अपने खादम मुकरर किए हैं जो हमारी मदद करते हैं कि हमें किस तरह से दुरुस्त होना और तरबियत पानी है। दुआ करें कि खुदावंद हमें तरबियत का रू बख्शे और हम तरबियत पाना शुरू कर दें। आमीन।